वैसे तो भारत की राजनीति में महिलाओं का आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन उनका राजनीति में अपने अनुभवों को बेबाकी से कागज पर उकेरना जरूर दुर्लभ बात है। जया जेटली की किताब का शीर्षक पढ़कर पहले पहल ये आभास मिलता है कि राजनीति में उनके अनुभव बहुत सुखद नहीं रहे हैं, और शायद इसीलिए वो राजनीति के अपने राहगीरों को बिच्छू की संज्ञा देती हैं। मैंने सबसे पहला सवाल उनसे यही पूछा कि आपने अपनी आत्मकथा का नाम लाइफ अमंग स्कॉर्पियंस क्यों रखा?
जी, एक तो स्कॉर्पियंस बिच्छू जो होते हैं उनका DNA में है कि वो टंक मारे, काटे। इस किताब का नाम इसलिए रखा कि मैंने एक किस्सा अखबार में देखा था जिसमें एक महिला मलेशिया में एक शीशे के पिंजरे में अपने आप को एक महीने के लिए बंद कर दिया 2000 बिच्छुओं के बीच, और पता नहीं क्यों किया, और सारे दुनिया उनको देखते रहे। 7 बिच्छुओं ने उनको काटा भी और उनको थोड़ा सा इलाज भी करना पड़ा, और आखिर में वो बाहर निकल आई और म्यूजियम का डायरेक्टर ने उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया। मुझे वो पढ़ के ऐसे लगा कि एक महिला का सार्वजनिक जीवन ऐसे ही होता है, शीशे के पिंजरे के अंदर सारा दुनिया आपको देख रहे हैं, और जहां मौका मिले आपको किसी तरह मारे, तकलीफ दें।
1942 में शिमला में जन्मी जया जेटली ने अपनी पढ़ाई दिल्ली के मशहूर मिरांडा हाउस और अमेरिका के स्मिथ कॉलेज में की। पढ़ाई के बाद उन्होंने कुछ दिनों तक लंदन के एयर इंडिया के दफ्तर में काम भी किया। उन दिनों वहां कमलेश शर्मा, उनके भावी पति अशोक जेटली, मणिशंकर अय्यर और राजीव गांधी भी पढ़ रहे थे।
कैम्ब्रिज में वो लोग पढ़ते थे, मैं लंदन में काम करती थी। मेरा तो बिल्कुल फालतू काम था, एक फाइलिंग क्लर्क का काम था एयर इंडिया, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था कि इंडिया वापस आने के लिए एक टिकट, और मुझे थोड़ी सी आज़ादी चाहिए थी कि मैं एक साल अकेले रहूं या अपने कोई सहेली के साथ रहूं। भारत आके उन दिनों में आप अलग नहीं रह सकते थे, फिर फैमिली के साथ, फिर ये सब एक आज़ादी नहीं मिलती आपको। तो वीकेंड्स पे मैं कैम्ब्रिज जाती थी जहाँ ये सारी टोली, राजीव गांधी भी, तो राजीव गांधी सोनिया गांधी के थोड़ा बहुत दोस्ती बढ़ाने के परस्यूट में थे, हम लोग ये सब देखते थे। साथ में एक ही रेस्टोरेंट में जाना, कभी कोई पार्टी में वहाँ साथ में रहना, हम लोग हलो हलो बोलते थे। और बाद में जब मेरे हस्बैंड IAS में आ गए और JNK आ गए, तो राजीव गांधी इंडियन एयरलाइंस का पायलट था। कभी कभी हम लोग एयरपोर्ट जाते थे किसी को लेने, तो राजीव गांधी पायलट होते हुए उधर उतर के एयरपोर्ट का कॉफ़ी शॉप में अकेले बैठते थे। तो कभी कभी हम भी कहते थे बेचारा प्रधानमंत्री का बेटा है लेकिन अकेला बैठा है, तो इनके साथ चलो बैठो, कॉफ़ी पियो, ऐसे भी होता था।
लंदन से दिल्ली वापस आने पर जया जेटली ने पहले गुजरात एम्पोरियम गुर्जरी में काम करना शुरू किया, और फिर दिल्ली की मशहूर दिल्ली हाट को अस्तित्व में लाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी।
दिल्ली हाट इसलिए शुरू हुई क्योंकि एक तो मैं देखती थी कि साधारण कारीगर, कुंभार लोग, पंखा बनाने वाले लोग, टोकरी बनाने वाले लोग हमेशा सड़क पे बैठ के अपना काम भी करना, रहना और वहां से अपना माल बेचना। तो एक दिन सड़क में एक कुंभार था जिसका घर टूटा पड़ा था और वो बैठ के रो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने आके कहा है कि ये राजीव गांधी का घर वो छतरपुर का मकान में जाने का रास्ता बन गया है, सिक्योरिटी हैजर्ड हो गया कुंभार को वहाँ किनारे में बैठना। तब मैं कोर्ट गई इनके लिए कि इनको अधिकार होना चाहिए अपना रोजगार कमाने के लिए, और ऐसे नहीं हटाना, कुछ तो उनके लिए जगह बनानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने म्यूनसिपैलिटी से बोला कि एक जगह बनाओ। उस एक बात को मैंने पकड़ लिया, VP सिंह तब प्रधानमंत्री थे, और मैं उनसे मिलकर मैंने कहा कि ये एक मेरी योजना है कि ऐसे एक मार्केट बनाया जाए जहाँ लोग आते रहे जाते रहे और कारीगर के लिए हो। तो उनको अच्छा लगा, उन्होंने कहा हाँ डू इट इमीडिएटली। करते करते 6 साल लगा ये सब करने में और फिर खड़ा हो गया।
1977 में उनकी मुलाकात पहली बार समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस से हुई थी। उस समय वो जनता पार्टी सरकार में उद्योग मंत्री थे और जया के पति अशोक जेटली उनके स्पेशल असिस्टेंट हुआ करते थे। उस जमाने में फर्नांडिस इसलिए भी चर्चा में थे कि उन्होंने संसद में मुरारजी देसाई सरकार का जोरदार बचाव करने के 72 घंटों के भीतर उस सरकार के खिलाफ मतदान किया था। उस समय जॉर्ज ने BBC से बात करते हुए कहा था,
12 जुलाई को मैंने सरकार का बचाव किया था। वो सरकार जितनी मोरारजी भाई की थी इतनी हमारी भी थी, लेकिन लोग इस बात को भूल जाते हैं कि 42 लोगों के मंत्रिपरिषद में सिर्फ एक ही मंत्री निकला जो 3 दिन लगातार हमारे सरकार पर हल्ला होते हुए उसका बचाव के लिए खड़ा हो गया। 3 दिनों में और कोई 41 मंत्री में से कोई खड़ा नहीं हो गया था, नंबर एक। नंबर दो, जब मैंने मेरे सरकार का बचाव किया तब मेरी सरकार अभी भी संसद में बहुमत में थी। मेरे सरकार का बहुमत 12, 13, 14 को टूट गया। जब बहुमत टूट गया तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में हमने मुरारजी भाई से कहा, मुरारजी भाई बहुमत खत्म हुआ है, 100 वोट से हम लोग हार रहे हैं कल, तो आपको इस्तीफा देना चाहिए, नया नेता चुनना चाहिए। पार्लियामेंट्री बोर्ड में सभी लोगों ने इसका समर्थन किया सिवा मुरारजी भाई। मुरारजी भाई का जवाब रहा, अगर मैं अकेला भी रहूं तो मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। ऐसे स्थिति में जब दल हमारा अल्पमत में गया और प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने से इनकार किया नेतृत्व से और अपने पद से, तब मैंने उचित समझा कि मैं उससे हट जाऊं।
जया जेटली ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ काम करना शुरू कर दिया। एक समय ऐसा आया कि वो जॉर्ज की पार्टी समता पार्टी के अध्यक्ष पद तक जा पहुंची। मैंने जया जेटली से पूछा कि जॉर्ज आपके सिर्फ दोस्त थे या इससे भी कुछ बढ़कर?
कई किस्म के दोस्त होते हैं और एक लेवल ऑफ दोस्ती होती है। इसमें एक इंटेलेक्चुअल रिस्पेक्ट जो एक महिला को बहुत ज़रूरत होती है इसका, और कोई अगर महिला काबिल भी है, सोच भी सकती है, राजनीतिक सोच भी उनके अंदर है, ये सब मुझे और कहीं से नहीं मिला। जॉर्ज साहब हमेशा ही कहते थे, एक तो मुझे ये अच्छा लगा, दूसरा उनमें एक बहुत ज़्यादा मानवता का एक सोच हुआ करता था। उन्होंने मुझे एक बार बताया कि वो जेल में थे तो पंखा के ऊपर से एक चिड़िया का घोंसला में से 2-3 छोटे बच्चे गिर गए। वो उस समय उड़ नहीं पा रहे थे तो उन्होंने, उनका कोई ऊनी टोपी था, ऊनी टोपी का एक घोंसला बना के उन्होंने उन चिड़ियों को पाला। कहीं भी जाओ जेब में 2 टॉफ़ी रखते थे, इंडियन एयरलाइन में टॉफ़ी मिलता था मुफ्त में उन दिनों में, तो कोई बच्चा मिल गया, कोई कुत्ता मिल गया, उनको देते थे। ऐसे सब चीज थे जो एक ह्यूमैनिटी की तरह से हम लोगों को जोड़ा गया।
जॉर्ज फर्नांडिस एक विद्रोही राजनीतिज्ञ थे जिनका परंपराओं में यकीन नहीं था। हैरी पॉटर की किताबों से लेकर महात्मा गांधी और विंस्टन चर्चिल की जीवनी तक उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उनकी एक जबरदस्त लाइब्रेरी हुआ करती थी जिसकी कोई भी किताब ऐसी नहीं थी जो उन्होंने न पढ़ी हो। 70 साल की आयु तक जॉर्ज अपने कपड़े खुद अपने हाथों से धोया करते थे।
जिंदगी में उन्होंने कभी न कंघी खरीदा न इस्तेमाल किया, और कपड़ा वो एक सेल्फ डिसिप्लिन के लिए खुद धोते थे। इस्त्री तो जरूर करवाते थे लेकिन उनको ये कलफ डाल के, ये सफेद सफेद कड़क नेता है ना, वो ऐसा अच्छा नहीं लगता था। लेकिन लालू यादव ने एक बार भाषण में कहा कि जॉर्ज साहब बिल्कुल बोगस है, वो कपड़ा धोबी से धुलवा के फिर धोबी से जब वापस आता था वो उसको निचोड़ निचोड़ के मिट्टी में थोड़ा सा मिला के तब पहनता था। तो उस पर कोई टीवी वाले आए और बोले कि जो लालू जी ने ऐसे कहा तो जॉर्ज साहब का हम एक रूबरू प्रोग्राम करना चाहते हैं जिसमें वो अगर तैयार हो जाए तो उनका कपड़ा धोते हुए हम एक फिल्म कर सकते हैं। तो जॉर्ज साहब ने मंजूर कर दिया, उनको मज़ा आया। तो कपड़ा धोते हुए लुंगी पहन के बाथरूम में जमीन पे बैठ के कपड़ा धोने वाला एक सीन शायद राजीव शुक्ला का जो टीवी एजेंसी, उन्होंने एक बार किया था। 79 में एक बार हम लोग ट्रेड यूनियन मीटिंग के लिए बॉम्बे गए, अशोक लंच होम करके एक जगह है, वहाँ बोले कि बहुत अच्छा मछली मिलता है, लाओ हम आप सबको खिलाएंगे। तो हम लोग गए और बहुत अच्छा लगा कि ड्राइवर भी और हम लोग भी सब एक ही मेज़ पे बैठे रहे, मगर बहुत कम लोग ऐसे करते हैं।
जॉर्ज शायद भारत के अकेले मंत्री थे जिनके निवास स्थान पर कोई गेट या सुरक्षा गार्ड नहीं था और कोई भी उनके घर बेरोक टोक आ जा सकता था।
चव्हाण साहब होम मिनिस्टर थे, वो सामने रहते थे और एक उनका बहुत ही सिक्योरिटी माहौल शुरू हो गया था। कई बार ऐसे होता था कि चव्हाण साहब बाहर से निकल रहे हैं होम मिनिस्टर, तो ऑपोजिट जो गेट था जॉर्ज साहब का वो और आसपास के गेट सब बंद कराते थे ताकि उन घरों में ठहरने वाले लोग भी अंदर बाहर नहीं जा सकते। तो उससे उनको बहुत गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा उनको भी पार्लियामेंट जाना है, मुझे भी जाना है, अगर उनके लिए मुझे बंद कर देंगे तो ये मैं नहीं मंजूर कर सकता हूँ, निकालो गेट, हमारे सामने कह दिया। तो सारे लोगों ने गेट उखाड़ा हिंज से और कभी गार्ड नहीं लिया। डिफेंस मिनिस्टर बने तो भी वाजपेयी जी सब लोग बार बार उनसे बोले कि आप गार्ड रखो गार्ड रखो, बोला नहीं, जब मुझे गार्ड चाहिए तो इसका मतलब है मुझे हिम्मत नहीं है लोगों के सामने आना। आखिर में उन्होंने गार्ड तब स्वीकार किया जब पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ, मैंने भी उनसे कहा कि देखिए अगर आपको मारा जाएगा तो जॉर्ज फर्नांडिस चलो कोई बात नहीं, लेकिन कंट्री का डिफेंस मिनिस्टर को मारा जाना देश के लिए बहुत बड़ा धक्का है। तब उन्होंने एक दो गार्ड रखा।
जया जेटली के करियर को उस समय बड़ा झटका लगा जब तहलका पत्रिका ने एक स्टिंग ऑपरेशन कर उन पर कुछ रक्षा सौदों के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया। मैंने जया जेटली से पूछा कि वास्तव में हुआ क्या था।
ये लोग आए जो कभी मुझसे मिले ही नहीं थे और आके बात करने लग गए ऐसे ही फालतू में। ये लोग आए और फिर सडनली बीच में बोलते हैं कि ये मैडम को ये दे दूं, तो क्या दूं ये सब मुझे पता ही नहीं था। लेकिन पहले बोला था कि पार्टी के लिए कुछ ये देना चाहते हैं। अब पार्टी को डोनेशन देना कोई गैरकानूनी बात नहीं है। और जब मैंने कहा कि आप ये भेज दो मैसूर जहाँ हमारे मिनिस्टर एक सम्मेलन कर रहे हैं, तो उन्होंने अच्छा 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 बोल दिया। फिर बातों में कहने लग गए कि हमारे की परेशानी है डिफेंस मिनिस्ट्री, और मैं तब तुरंत कहने लग गए कि मुझे नहीं पता डिफेंस मिनिस्ट्री का रवैया, मुझे नहीं मालूम वो लोग क्या करते नहीं मालूम। बार बार मुझे बोलते रहे कि नहीं हमारी बात सुन नहीं रहे हैं, मैं एक चिट्ठी लिख रहा हूँ जवाब नहीं आ रहा, जैसे कि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और जैसे कि वो भी कुछ भ्रष्टाचार में लगे हैं मिनिस्टर वो ऑफिसर्स जो इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। तो मैंने कहा कि अगर कोई गलत काम हो रहा हो तो मैं इतना ही कह सकती हूँ कि सबको बराबरी का नज़र से देखें, नहीं तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो पहले आप फॉलो अप करके देख लेना। अच्छा अच्छा ठीक है बस इतना ही चाहिए बोल के चले गए। और बाद में देखना कि मैंने पैसा लिया और मैं डिफेंस मिनिस्टर के घर में बैठ के हैबिटुअली पैसा लेती हूँ, ये सब कहानी बाहर आ गई।
सच्चाई जो भी हो, जया जेटली को इसकी बड़ी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ी। उनको पार्टी के अध्यक्ष पद से हटना पड़ा। न सिर्फ ये बल्कि जॉर्ज फर्नांडिस को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा।
मुझे फायदा तो नहीं चाहिए था राजनीति से, लेकिन मुझे बदनामी नहीं चाहिए थी। और इससे धक्का पहुंचा मुझे कि मुझे बदनाम करके, जब पूरा जिंदगी मैंने ईमानदारी से काम किया, गरीबों के लिए काम किया, तो मुझे पैसा लेके देश को बेचने वाले व्यक्ति जैसे अगर दुनिया के सामने पेश किया जाए तो सबसे ज्यादा दुख मुझे आज भी वही लगता है।
एक दिन ऐसा भी आया कि जया जेटली को जॉर्ज फर्नांडिस की पत्नी लैला कबीर ने जॉर्ज की जिंदगी से पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित करवा दिया। जॉर्ज इस समय अल्जाइमर की बीमारी से पीड़ित हैं, उनकी याददाश्त और पहचानने की शक्ति जाती रही है। 2014 में काफी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद जया जेटली को हर 15 दिन पर सिर्फ 15 मिनटों के लिए जॉर्ज फर्नांडिस से मिलने की अनुमति मिली है। जया जेटली अब भी हर 15 दिन बाद ठीक 11:05 पर सिर्फ 15 मिनटों के लिए जॉर्ज फर्नांडिस से मिलने जाती हैं। रेहान फजल, BBC दिल्ली।